मोर से चोर तक। हिंदुस्तानी थिएटर छोड़ने के बाद हबीब तनवीर सचमुच फुटपाथ पर आ गए। न रहने की ठौर, न खीसे में पैसा, लेकिन कुछ नया करने की जिद उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हिंदुस्तानी थिएटर ने उन्हें दो नायाब तोहफे दिए थे जो ताजिंदगी उनके लिए कामयाबी के रहगुजर की तरह साथ रहे। एक नायाब तोहफा था उनका नया तजुर्बा, जिसने उनकी नज़र के दुर्लक्के को काफ़ी कुछ साफ कर दिया था और उन्हें अपनी मंजिल की एक तस्वीर सी नज़र आने लगी थी। दूसरा नायाब तोहफा इससे भी ज़्यादा कीमती, या कहिए अनमोल साबित हुआ। वो था मोनिका मिश्र की सच्ची और गहरी दोस्ती का हाथ, जो बाद में जिंदगी भर का साथ बन गया। मिट्टी की गाड़ी के दौरान ही दोनों एक दूसरे के ख्यालात को समझने और उन्हें सही मायने में तरजीह देने लगे थे। दोनों ने तय किया कि मिलजुल कर अपने किस्म का नाटक करेंगे। मोनिका जी ने जनपद के बंगले के बड़े से गैराज को देखा और हबीब तनवीर की सहमति से उसमें रहकर काम करने का फैसला किया। उस वक्त हबीब तनवीर के साथ 9 कलाकार और थे, ज़्यादातर छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने हबीब तनवीर के साथ ही खुद ब खुद हिंदुस्तानी थिएटर छोड़ दिया था और पूरी शिद्दत से उनके साथ नाटक करने के लिए तैयार थे। अब हुई नए किस्म के नाटक की शुरुआत। सबसे पहले मोनिका मिश्र ने एक एकांकी किया 7 पैसे। एक चेक कहानी के आधार पर इसे हबीब तनवीर ने लिखा था। वह नाटक के बारे में हबीब तनवीर के शब्द, वह एक माँ और उसके बच्चे की सुंदर कहानी थी। बच्चा एक रेल कामगार का लड़का था और वह एक साबुन की बट्टी के लिए 7 पैसे इकट्ठे करने की कोशिश कर रहा है। माँ बच्चे के साथ खेलती है और बड़े काव्यात्मक रूप में पैसे की बातें करते हुए पैसे को एक तितली के रूप में वर्णित करती है, जिसे वे पकड़ेंगे। और उन्होंने सारे कोनों में यहाँ वहाँ झाँका और एक एक करके पैसे इकट्ठे करते गए, लेकिन अंत में माँ को खून की उल्टियाँ हो रही हैं और वह मर जाती है। वह एकांकी बड़ा दिलचस्प और कामयाब रहा। उसमें पारसी थिएटर का प्रसिद्ध अभिनेता मास्टर चंपालाल ने भी अभिनय किया था। उनकी पत्नी भी बहुत अच्छी अभिनेत्री थी और उन्होंने माँ की भूमिका अदा की थी। यह एकांकी सबसे पहले YMCA में प्रदर्शित किया गया और बाद में कनाट प्लेस के उस बड़े पार्क में जहां अब पालिका बाजार है। नाटक के खत्म होने के बाद एक थाली घुमाई जाती जिसमें दर्शक जितना कुछ देना चाहे डाल देते थे। इस दौरान नाटक मंडली के नाम का मुद्दा भी सामने आया। मोनिका मिश्र ने सुझाव दिया नया थिएटर, क्योंकि हम नए किस्म का थिएटर कर रहे हैं। बस यह नाम हबीब तनवीर को भी बहुत सटीक लगा और यह नई नाट्य मंडली का नाम नया थिएटर हो गया, जो आज तक कायम है। नया थिएटर की प्रारंभिक प्रस्तुतियों में 7 पैसे के अलावा जालीदार पर्दे, फांसी, तंबाकू से नुकसानात आदि अनेक लघु नाटक या एकांकी किए गए, लेकिन सिर्फ नाटक करते हुए इतना पैसा नहीं मिल पा रहा था जो गुजर बसर के लिए काफ़ी हो। इसलिए हबीब तनवीर नाटकों के साथ साथ स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए भी मजबूर हुए। लिंक, स्टेट्समैन, पैट्रियट जैसे अखबारों और रिसालों के लिए फिल्मों और नाटकों की समीक्षा करना भी शुरू किया। इन समीक्षाओं से थोड़ा बहुत पैसा तो मिलता ही था, जिससे गुजर बसर में कुछ सहूलियत हो गई थी, लेकिन इसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि हबीब तनवीर की फिल्मों और नाटकों की गहरी समझ की छाप एक व्यापक पाठक पर पड़ी और इस क्षेत्र में हबीब तनवीर को काफ़ी गंभीरता से लिया जाने लगा। पाश्चात्य और भारतीय कला माध्यमों के सूक्ष्म विश्लेषणात्मक दृष्टि के कारण हबीब तनवीर एक आला दर्जे के समीक्षक के रूप में प्रतिष्ठित होने लगे। नया थिएटर की स्थापना हो जाने के बावजूद कई सालों तक हबीब तनवीर अपनी खास छाप छोड़ने में नाकामयाब रहे। ऐसा नहीं कि इस बीच उनके द्वारा निर्देशित नाटकों को कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वह कामयाबी चलताओं किस्म की थी। देहली प्लेयर्स नामक संस्था के लिए मैलियर की कुछ प्रसिद्ध कॉमेडी द बुर्जुआ जेंटलमैन का रूपांतर मिर्जा शौरत बेग के नाम से किया। इस नाटक में उन्होंने उस अल्जीरियाई गीत का सटीक उपयोग भी किया जो उन्होंने पेरिस में एक अल्जीरियाई युवक से सीखा था। नाटक कामयाब तो रहा, लेकिन उससे कोई नई जमीन टूटती नजर नहीं आई। यह सिलसिला करीब 1 दशक तक जारी रहा, जिसमें उन्होंने आगा हश्र कश्मीरी के नाटक रुस्तम सोहराब के अलावा अनेक प्रसिद्ध पाश्चात्य नाटककारों के रूपांतर प्रस्तुत किए। शिक्षा मंत्रालय द्वारा मैसूर में आयोजित ड्रामा टीचर्स कैंप के दौरान उन्होंने ब्रिस्ट का एक नाटक ए गुड पर्सन ऑफ सेजुआ का निर्देशन किया। संभवतः भारतीय रंगमंच में बतौर ब्रिस्ट की रंग दृष्टि का पहला परिचय इसी नाटक से हुआ। इसके बाद हबीब तनवीर ने ब्रिस्ट के रंगकर्म पर एक लेख लिखा, ब्रिस्ट फॉर वन प्रोड्यूसर। इस आलेख में उन्होंने ब्रिस्ट के नजरिए और भारतीय रंगमंच के प्रति अपनी सोच के बारे में कुछ इतनी महत्वपूर्ण बातें कहीं जो अंततः उनके संपूर्ण रंगकर्म की जमीन तैयार करने में कामयाब हुई। तभी उन्होंने विशाख दत्त के संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस को अंग्रेजी में प्रस्तुत किया और लोरका, ऑस्कर वाइल्ड, शेक्सपियर तथा गोल्डोनी के विश्व प्रसिद्ध नाटकों की प्रस्तुतियों को सफलतापूर्वक किया। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने यह जाहिर कर दिया कि पाश्चात्य नाटककारों के श्रेष्ठ नाटकों की भारतीय दर्शकों के लिए कितनी और क्या अहमियत होनी चाहिए। प्रकारांतर में से इसका एक प्रभाव तो यह पड़ा ही कि पाश्चात्य रंग दृष्टि से आक्रांत हमारे देश के रंगकर्मियों को एक जोरदार जवाब मिला जिसने हबीब तनवीर के कद को कुछ और बड़ा कर दिया। समीक्षक के रूप में भी नई रंग समीक्षा के लिए हबीब तनवीर प्रतिष्ठित हो चुके थे। सन 1960-61 में हबीब तनवीर और मोनिका मिश्र ने विवाह कर लिया। इस विवाह ने हबीब तनवीर की नई ताकत दी। मोनिका मिश्र रंगमंच के विविध पक्षों से केवल परिचित नहीं थी बल्कि उसमें निपुण भी थी। यूरोप में उनका विधिवत प्रशिक्षण नया थिएटर के लिए खूब काम आया। इसके अलावा उन्होंने नया थिएटर के संगठन का काम भी संभाल लिया। हबीब तनवीर इस पक्ष से काफ़ी कुछ निश्चिंत होकर अपने रंगकर्म के सृजनात्मक पक्ष की ओर पूरी तरह उन्मुख हो गए। हबीब तनवीर और मोनिका मिश्र के अंतरंग संबंधों का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष यह कि दोनों ने पाश्चात्य रंगकर्म का सूक्ष्म अध्ययन किया था और भारतीय समकालीन मुहावरे की खोज के संदर्भ में दोनों ही एक दूसरे के पूरक थे। हबीब तनवीर की रंग दृष्टि से मोनिका मिश्र पूरी तरह प्रभावित रही हैं और उनका योगदान हबीब तनवीर के लिए प्रेरक और शक्तिवर्धक रहा। लेकिन इसके बावजूद हबीब तनवीर की राहों में कम अवरोध नहीं रहे। हाँ, यह बात जरूर है कि कठिन से कठिनतम परिस्थितियों में भी मोनिका मिश्र के अन्यतम सहयोग ने हबीब तनवीर को संघर्ष के लिए निरंतर प्रेरित किया। सन 1968 में गालिब शताब्दी समारोह समिति की ओर से हबीब तनवीर को एक प्रस्ताव दिया गया कि मिर्जा गालिब की शायरी और उनकी जिंदगी पर वे एक नाटक प्रस्तुत करें। इसके लिए उन्हें 5,000 रुपये की राशि देने की पेशकश की गई। कहना न होगा कि उस जमाने 5,000 रुपये की रकम बहुत बड़ी थी, खास तौर पर मुफलिसी के उस दौर में जबकि उनकी इकलौती बेटी नगीन का जन्म हो चुका था। उन्हें यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और उन्होंने इसे स्वीकार किया। इसके अलावा एक बात यह भी थी कि बतौर शायर हबीब तनवीर गालिब के अंदाज़े बयां से बेहद मुतासिर थे। दूसरी ओर गालिब की अय्याश तबीयत के बरक्स ताज़िंदगी उन्हें जो अपमान, प्रताड़ना और अवमानना सहनी पड़ी उसमें हबीब तनवीर को ऐसे अनेक तत्व नजर आए जो एक अच्छे नाटक की जमीन तैयार करते थे। इसलिए हबीब तनवीर ने खासी मशक्क़त और मेहनत की से उसका मजमून तैयार किया, शीर्षक रखा मेरे बाद। गालिब के पूरे दीवान को बार बार पढ़ने और समझने के बाद नाटक की जिस जुबान की तलाश थी वो उन्हें लाला रतननाथ सरसार के लेखन में नजर आई। बहरहाल, हर नज़रिए से मेरे बाद का आलेख एक निहायत चुनौती भरा काम साबित हुआ। अभिनेताओं के चुनाव का काम भी आसान नहीं था। उस जुबान की खसूसियत को बनाए रख कर उसमें नाटकीयता के अंशों की कलात्मक अभिव्यक्ति कर पाना आसान काम नहीं था। रिहर्सल शुरू हुई और सब काम ठीक ठाक तरीके से चल निकला, लेकिन प्रदर्शन के ऐन पहले गालिब को भूमिका करने वाला अभिनेता नाटक छोड़कर चला गया। अब हबीब तनवीर के सामने सिर्फ दो विकल्प बचे थे। पहला यह थे वे इस नाटक को मंचित ही न करें, लेकिन यह विकल्प मौजूद नहीं था। नाटक के प्रदर्शन का प्रचार प्रसार हो चुका था, नाटक स्थगित नहीं किया जा सकता था। दूसरा विकल्प यह था कि गालिब की भूमिका में किसी दूसरे अभिनेताओं को तैयार किया जाए। यह काम भी नामुमकिन साबित हुआ। आखिरकार गालिब की भूमिका में हबीब तनवीर को खुद उतरना पड़ा। भले ही पूरा नाटक उन्होंने ही लिखा था और निर्देशित भी किया था, फिर भी नाटक के सारे संवाद उन्हें जुबानी याद नहीं थे। नाटक की जुबान ऐसी थी कि मंच पर इम्प्रोवाइजेशन की भी गुंजाइश नहीं। इसीलिए मेरी बात के प्रदर्शन में गालिब की भूमिका में हबीब तनवीर आलेख हाथ में लेकर मंच पर उतर गए। परिणाम जो होना था वही हुआ। कुछ खास दोस्तों के अलावा जो गालिब की शायरी और शख्सियत के दीवाने थे, सामान्य दर्शक ने उसे सिरे से नकार दिया। नाटक पूरी तरह चौपट हो गया। बेशक गालिब की शायरी और उसकी जिंदगी में मुख्तलिफ पहलुओं को जिस तरह हबीब तनवीर ने पिरोने की कोशिश की उसे जरूर प्रशंसा प्राप्त हुई। शायद मेरे बाद हबीब तनवीर की पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक साबित हुआ। वैसे देखा जाए तो हबीब तनवीर की रंग यात्रा में कुल मिलाकर विफलताएं कहीं ज़्यादा हैं और सफलताओं की संख्या कहीं कम, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि वे अपनी हर विफलता से कुछ न कुछ सीखते चले गए और इसी वजह से उनकी सफल प्रस्तुतियाँ उन्हें एक ऐसे मुकाम पर ला खड़ा करती हैं जो समकालीन भारतीय रंगमंच के इतिहास में शिखर तक ले जाने में कामयाब रहीं। आगरा बाजार के बाद उन्हें बड़ी सफलता गांव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद में मिली, जिसने उनके मुहावरे को गढ़ने में मील के पत्थर का काम किया। आमतौर पर यह समझा जाता है कि अभी तुम्हें का सबसे महत्वपूर्ण नाटक चरणदास चोर है, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दी। लेकिन चरणदास चोर की सफलता का बीज मोर नाम दामाद में अंतर्निहित है, जिसके विश्लेषण के बिना हबीब तनवीर के रंगकर्म का समुचित मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। मोर नाम दामाद के बारे में हबीब तनवीर के शब्द, इस हिसाब से पहली मंजिल थी आगरा बाजार और गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद दूसरी बड़ी मंजिल, चरणदास चोर से भी ज़्यादा बड़ी। यह मेरा पहला मोड़ था जहाँ से मैंने वह दिशा पकड़ी जो आगे मेरी अपनी दिशा बनी, जिस खासियत के कारण आज मैं देश विदेश में जाना जाता हूँ। लोग चरणदास चोर को ज़्यादा जानते हैं, उसे ज़्यादा अहमियत देते हैं, क्योंकि एक पूरे नाटक के तौर पर वह ज़्यादा पॉपुलर हुआ। लेकिन चरणदास चोर मुमकिन हुआ गांव का नाम ससुराल के कारण। आखिर इसका रहस्य क्या है? गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद की रचना सन 1973 में रायपुर में आयोजित नाचा कार्यशाला में हुई। इस कार्यशाला में 100 से अधिक नाचा का श्रेष्ठ कलाकारों ने भागीदारी की थी। दिल्ली के श्री नेमीचंद जैन के अतिरिक्त कलकत्ता और रायपुर के अनेक रंगकर्मी तथा समीक्षक भी आमंत्रित किए गए थे। इस कार्यशाला में नाचा के कलाकारों को अपने अभिनय के लिए पूरी छूट दी गई। उनका अभिनय कौशल, संवादों को बोलने में सहजता और आशुरचना की महारत, भाव भंगिमाएं तथा दर्शकों को आकर्षित कर सकने की क्षमता आदि अनेकानेक पक्षों का विवेचन करते हुए उन्होंने कुछ नोट्स लिए। यह पद्धति काफ़ी कुछ वैसी ही थी जिसे वे बोरुंदा जोधपुर के रूपायण संस्थान में ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार उगम राज खिलाड़ी के दल के साथ ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह के निर्देशन के दौरान आजमा चुके थे। यह कहा जा चुका है कि बोरुंदा की उसी कार्यशाला में विजयदान तेथा बिज्जी ने उन्हें राजस्थान की अनेक लोक कथाएं सुनाई थी, जिनमें ठाकुर रूसड़ो ठाकुर पृथ्वीपाल सिंह के नाटक का आधार के अतिरिक्त खतीला चोर, चोर की सच्चाई असच्चाई के विषाद जो बिज्जी द्वारा संपादित मानतारी फुलवारी में संकलित है, की कथा भी सम्मिलित है, जिसके आधार पर हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक चरणदास चोर की निर्मित हुई। ऐसा कतई नहीं कि इसके पूर्व छत्तीसगढ़ की लोक कथाओं से हबीब तनवीर का परिचय ही नहीं था, लेकिन नाचा कलाकारों के बीच प्रचलित लोक कथाओं का मंचीय प्रस्तुतिकरण हबीब तनवीर के लिए खासा महत्वपूर्ण था। अनेक कथाओं को सुनने और समझने के बाद उन्होंने 3 लोक कथाओं को चुना। हमें सबसे दिलचस्प उन्हें वह लोक कथा लगी जिसमें एक शातिर प्रेमी अपनी प्रेमिका को लेकर भाग जाता है और उसकी खोज करने वाले लोग अंततः लाचार बेबस हो जाते हैं। इसका नायक अपनी प्रेमिका के पिता और अन्य लोगों को अपना परिचय देते हुए अपना नाम दामाद बताता है और गांव का नाम ससुराल। प्रेमिका को लेकर भाग जाने के बाद जब उसी युवती का पिता दूसरे लोगों से शिकायत करते हुए कहता है कि दामाद मेरी बेटी को लेकर भाग गया और वह ससुराल का रहने वाला है, तो सभी लोग उसका उपहास करते हैं। एक दूसरी कथा में युवती का पिता अनेक कारणों से उसका विवाह एक वृद्ध व्यक्ति से कर देता और इससे क्षुब्ध होकर युवती अपने नौजवान प्रेमी के साथ भाग जाती है। तीसरी कथा में कुछ और मनोरंजक तत्व हैं। गांव के 2 मनचले लड़के मौज मस्ती के लिए एक मेले में पहुंचते हैं, जहां उनकी भीड़ 2 युवतियों से होती है। उनकी छेड़खानी और मौज मस्ती के अंदाज में दोनों युवतियां प्रभावित होती हैं और मन ही मन उनसे प्रेम करने लगती हैं। यह बात जानने पर दोनों मनचले युवक पर भी इसका असर होता है और कुछ मनोरंजक स्थितियों के बाद अंततः उनका विवाह हो जाता है। ये अलग अलग 3 लोक कथाएं गांव का नाम ससुराल, मोर नाम दामाद का मूल कथानक बनी। हबीब तनवीर ने इन विभिन्न लोक कथाओं के ऐसे प्रसंग चुने जो एक नाटक का स्वरूप ग्रहण कर सकते थे। उस क्षेत्र की पारंपरिक प्रथाओं को इस कथानक में पिरो कर एक नितांत नया रूप दिया, साथ ही घटनाक्रम में उन स्थितियों को रेखांकित किया जिसने इस क्षेत्र के कलाकार पूरी तरह परिचित थे और जो उनके अंतरंग जीवन को प्रतिबिंबित करती थी। एक बात यह भी थी कि कथानक का स्वरूप इतना लचीला रखा गया जिसमें तात्कालिक स्थितियों पर भरपूर टिप्पणी की जा सके। रूढ़ियों पर प्रहार और वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार व्यंग्य और कटाक्ष से भरपूर अवसर जुटाए गए। इस तरह यह पूरी कथा उन कलाकारों की जानी पहचानी और अपनी ही जमीन से उगी ही बन गई। यह नाटक उनकी अपनी जिंदगी की व्यथा कथा और हास परिहास के अन्यतम अवसर जुटाने में समर्थ हुआ। इस तरह मोर नाम दामाद का कथा प्रसंग बहुत दिलचस्प बन गया। छत्तीसगढ़ में शरद पूर्णिमा का अवसर भारतीय परंपरा के अनुसार विशुद्ध आनंद का उत्सव होता है। यह परंपरा विभिन्न रूपों में सारे देश में प्रचलित है। छत्तीसगढ़ में इस दिन गांव के नौजवान घर घर जाकर अनाज सब्जी तथा अन्य सामग्री एकत्र करते हैं और उस सामग्री से गांव का सामूहिक भोजन तैयार होता है। गांव की नव युवतियाँ उस उपलक्ष्य में नृत्य संगीत के जरिए वातावरण को उल्लसित करती हैं। इस त्यौहार को छत्तीसगढ़ में छेर छेरा या छेरा छेरी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ भी युवक युवती होता है। इस त्यौहार के पश्चात दो मनमौजी युवक झंगलू और मंगलू मौज मस्ती के इरादे से निकलते हैं और शांति तथा मानती के साथ छेड़छाड़ करते हैं। झंगलू की छेड़खानी का अंदाज इतना अनोखा है कि मानती झंगलू पर मोहित हो जाती है। झंगलू भी उससे प्रेम करने लगता है, लेकिन मानती का पिता अपने बेटी का विवाह धन के लालच में गांव के बूढ़े सरपंच से कर देता है। झंगलू अपने मित्रों के साथ मानती की तलाश में निकल जाता है और वेश बदल कर वे सरपंच के गांव पहुंचते हैं। झंगलू और उसके साथ ही तरह तरह के से बूढ़े सरपंच को बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसने धन की बूती एक सुंदर नवती से ब्याह किया है। मानती की मालूम हो जाता है कि झंगलू ही वेश बदल कर उसे मुक्त कराने आया है। शिवरात्रि के अवसर पर गाँव में उत्सव आयोजित होता है, जिसे गौरी गौरा कहा जाता है। उस उत्सव में मानती भी सम्मिलित होती है और झंगलू उससे मिलकर उसे भगा ले जाता है। नाटकांत दो प्रेमियों के मिलन के उत्सव पर समाप्त होता है। दिलचस्प बात यह है कि तीन लोक कथाओं के संगम से अभी तन्वी ने नाटक का ढांचा तो तैयार कर लिया, लेकिन पूरा नाटक लेख तैयार नहीं किया गया। सभी कलाकारों को उन्होंने नाटक के प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया और पात्रों के चयन के बाद उन्हें मंच पर अभिनीत करने के लिए कहा। अभी तनवीर ने उन्हें अपनी ओर से संवाद भी नहीं दिया और सिर्फ यह बताया कि कहानी इस तरह शुरू होती है, इसमें इस तरह के मोड़ हैं और ये खास खास घटनाएं हैं। उन चरित्रों के संवाद करने और उन्हें बोलने से में इन नाचा कलाकारों को कोई दिक्कत नहीं हुई और वे अत्यंत सहजता के साथ अभिनय करने लगे। आरंभ में हबीब तनवीर के सामने दो कठिनाइयां उपस्थित हुई। पहली यह कि अभिनेता मनगढ़ंत संवाद बोलने की छूट मिल जाने के बाद कथा में ऐसे प्रसंग भी जोड़ते चले गए जो उनकी मूल कथा से काफ़ी कुछ अलग थलग थे, लेकिन दर्शकों की दृष्टि से वे सभी प्रसंग बेहद मनोरंजक और दिलचस्प भी थे। हबीब तनवीर ने उन्हें समझाया कि इन प्रसंगों को छोड़कर वे जल्दी मूल कथा पर लौटने की कोशिश करें, वरना दूसरा पात्र अपने संवाद बोलने का इंतजार ही करता रह जाएगा और कहानी पूरी गति के साथ आगे नहीं बढ़ेगी। इस प्रसंग में हबीब तनवीर ने कहा, हमारे एक एक्टर थे ठाकुर राम, बड़े अच्छे एक्टर थे, बड़ी सूझबूझ वाले, मर गए बेचारे। गांव का नाम में काम करते थे, शो में 20-20 मिनट का फर्क पड़ जाता था, डायलॉग भूल जाते थे और कोई नई बात छेड़ देते थे और फिर उसे ही बढ़ाते चलते थे। ऐसे में सामने वाले एक्टर को परेशानी होती थी। थोड़ी देर तो ठीक ठाक रहता, लेकिन जब ये ज़्यादा भागने लगते तो परेशानी होती कि कैसे वापस लाया जाए। तब धीरे से ठाकुर राम को बताना पड़ता था कि दादा, ये रिहर्सल नहीं, शो है, लाइन पर आइए। लेकिन हबीब तनवीर की एक कठिनाई इससे भी ज़्यादा बड़ी थी, वह थी इन कलाकारों का रंगमंच के अनुशासन का पूरी तरह अभाव। संवादों को अधिक कलात्मक बनाने के लिए कुछ विशेष स्थलों पर बलाघात या स्वराघात, दृश्यों को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए समूहन या दृश्य संयोजन की रीति नीति। इससे भी बड़ी बात यह थी कि अभिनेता की आंगिक भाषा कैसी हो। गति संचालन और भावभंगिमाओं के साथ मुद्राओं के जरिए अभिनेता अपनी आंतरिक मनोस्थिति को व्यक्त करने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करें। अभिनेताओं द्वारा कथानक पर पूरी पकड़ के बाद हबीब तनवीर ने पूर्वाभ्यास के दौरान इन बातों पर ध्यान देना शुरू किया। यूरोपीय रंगमंच के श्रेष्ठ तत्वों से उन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया था। वे चाहते थे कि अभिनय की इस सहजता के साथ अनेक अभिनेता रंगमंचीय अनुशासन के प्रति भी जागरूक हों। इस दृष्टि से उन्होंने अपने इन चुनिंदा अभिनेताओं को प्रशिक्षित करने का यत्न किया। गाँव का नाम ससुराल में ठाकुर राम, बुलवा राम, मदन लाल, गोविंद निर्मालकर, फिदाबाई जैसे श्रेष्ठ अभिनेता शामिल थे, लेकिन हबीब तनवीर उन्हें रंगमंच अनुशासन सिखाने में पूरी तरह असमर्थ रहे। हबीब तनवीर ने उन्हें समझाना शुरू किया, इस संवाद के बोलते समय तुम यहाँ रुको, अगले संवाद में तिरछे आ गए आओ, बाएं हाथ की बजाय दाएं हाथ का इस्तेमाल करो, अमुक संवाद को बोलने के बाद पीछे मुड़ो, उधर देखो, उधर नहीं, आदि आदि। इन अभिनेताओं ने हबीब तनवीर के निर्देशों का पालन करना शुरू किया। पहले तो उन्होंने बड़ा अटपटा महसूस किया, फिर जब वे अपनी मुद्राओं, भंगिमाओं, गति संचालन आदि के प्रति सतर्क होने लगे तो उनके अभिनय की सारी सहजता नष्ट हो गई। उनका ध्यान संवाद बोलने से पहले अपने हाथों और गतियों पर जाने लगा। उनके संवाद एकदम अस्वाभाविक और रटे रटाए से लगने लगे। अभिनय की जीवंतता खत्म हो गई, संवाद भावहीन हो गए। हबीब तनवीर ने इस पक्ष पर बहुत मेहनत की। उन्होंने समझाया कि अपने अभिनय की सहजता बनाए रखो, जैसा पहले बोलते थे वैसे ही बोलो, वह बहुत जरूरी है। सारे अभिनेता हबीब तनवीर से सहमति व्यक्त करने लगे, लेकिन वे हबीब तनवीर के निर्देशों का पालन करने में असमर्थ रहे। अगर वे हबीब तनवीर के निर्देशों का पालन करने की कोशिश करते तो सहजता नष्ट हो जाती, और अगर वे सहज रूप से संवाद बोलते तो वे हबीब तनवीर के निर्देशों को भूल जाते। उनकी एकाग्रता नष्ट हो जाती। दो तीन दिन तक अपने कलाकारों को लगातार लगातार समझाने के बावजूद जब हबीब तनवीर को सफलता नहीं मिली तो वे खुद बेहद झुंझला उठे। वे इस बात से पूरी तरह मुतमईन थे कि ये कलाकार अभिनय में निपुण हैं। संगीत और नृत्य की लयताल पर उनका अंग अंग थिरकने लगता है और वे कहानी का अंतरंग हिस्सा बन जाते हैं। इन कलाकारों की यह निपुणता और कौशल हबीब तनवीर के लिए निहायत जरूरी थी, लेकिन उस समय वे रंगमंची अनुशासन के भी कायल थे। अपने प्रयत्नों में पूरी तरह हार जाने के बाद हबीब तनवीर ने इन कलाकारों के सामने अपने सभी हथियार डाल दिए और उन्हें पूरी छूट दी कि जैसा वे उचित समझे उसी तरह अभिनय करें। फिर वे उनके अभिनय को गौर से देखने लगे। देखते ही देखते इन कलाकारों ने अपने क्षमता से समूचे वातावरण को जीवंत बना डाला। उनकी सहजता और ऊर्जा से सारा वातावरण रसमय हो गया। सभी कलाकार अपने चरित्रों के अलावा दूसरे चरित्रों से भी पूरी तरह घुलमिल गए और टीम वर्क का अनोखा रूप उभर कर सामने आया। मूर नाम दबाद की इस प्रस्तुति ने हबीब तनवीर को एक ऐसा पाठ पढ़ाया जिसने उनकी रंगमंची अवधारणा को पूरी तरह बदल दिया। वे इस नतीजे पर पहुँचे कि आंचलिक कलाकारों को यह प्रतिभा जन्मजात होती है। गाँव के मेले उत्सवों में त्योहारों और अनुष्ठानों में वे अत्यंत सहज रूप से अपनी कला को निखारने का अवसर पाते हैं और बस्ती के बुजुर्गवार इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें भरपूर प्रोत्साहित करते हैं। इनकी कला का परिष्कार इनके गुरुओं के द्वारा होता है जो उन्हें अधिक निपुण बनाने में सहायता करता है। खुलकर गाना, नाचना, हंसना, रोना तथा अन्य सभी भावों को व्यक्त करने में इनकी अभिनय पद्धति किसी औपचारिक प्रशिक्षण की मोहताज नहीं। गाँव का नाम ससुराल, मूड नाम दामाद जब मंच पर पहली बार प्रदर्शित हुआ तो उसने एक साथ हजारों दर्शकों का आनंद कर दिया। हबीब तनवीर को भी आस्वाद की तलाश थी जो उन्हें मोर नाम दामाद के निर्देशन के दौरान मिला। यह निसंदेह आगरा बाजार से आगे कड़ी थी, लेकिन इस अभिनय पद्धति की बारीकियों से हबीब तनवीर का गहरा साक्षात्कार मोर नाम दामाद में ही संभव हुआ। हबीब तनवीर का यह कथन है कि चरणदास चोर मुमकिन हुआ तो गाँव का नाम ससुराल मोर नाम दामाद के कारण इसी अनुभव की सच्ची अभिव्यक्ति है। चरणदास चोर में इस अभिनय पद्धति के साथ एक महत्वपूर्ण पक्ष और जुड़ गया, वह था इसका कथा पक्ष। चरणदास एक साथी चोर जिसे पकड़ने के लिए सिपाही उसके पीछे लगे हैं, वह उनसे बसता और उन्हें मूर्ख बनाता हुआ एक गुरु के आश्रम में पहुँचता है जहाँ उनके अनेक भक्तजन बैठे थे। गुरु की कृपा से वह सिपाहियों से बच जाता है और उनके उपदेशों से प्रभावित होकर उनका शिष्य बनना चाहता है, लेकिन गुरु जी को शिष्य बनाने से पहले उनसे बुरी आदतें छोड़ने का वचन लेते हैं। यह मालूम होने पर कि वह चोर है, गुरु जी उसे चोरी न करने का वचन लेना चाहते हैं, लेकिन चोरी करना तो उसका धंधा है, वह कैसे छोड़ सकता है। वह गुरु जी से कहता है कि मैं आपको एक की बजाय चार वचन दे सकता हूँ, लेकिन चोरी नहीं छोड़ सकता। गुरु जी के पूछने पर वह शातिराना तरीके से ऐसे चार वचन लेता है जो कि सामान्यतः चोर की जिंदगी में संभव नहीं हो सकते हैं। वे हैं, मैं कभी हाथी पर बैठ कर जुलूस में नहीं जाऊँगा, मैं कभी सोने की थाली में भोजन नहीं करूंगा, किसी रानी से शादी नहीं करूंगा, किसी देश का राजा नहीं बनूंगा। इसी चोर के जीवन में इन चार बातों की असंभवता को समझते हुए गुरुजी उससे वचन एक वचन और लेने को कहते हैं कि तू जिंदगी में कभी झूठ मत बोलना। वह यह भी वचन ले लेता है कि जीवन भर वह सच बोलेगा। इसके बाद घटनाएं अत्यंत नाटकीय मोड़ों से गुजरती है। छोटी मोटी चोरी करने के बाद वह शाही खजाने में चोरी करता है और पकड़े जाने पर रानी के सामने सारी बातें सच सच कर देता है। उसकी सच्चाई के कारण शाही खजांची धोखाधड़ी में पकड़ा जाता है और रानी चरणदास की सच्चाई की प्रशंसा करते हुए उसे ससमान हाथी के होंदे पर बिठाकर जुलूस के रूप में आमंत्रित करती है। गुरु को दिए गए वचन के कारण वह इनकार कर देता है। रानी चरणदास से और अधिक प्रभावित होती है और राजमहल में बुलवाकर आवा भगत के लिए सोने की थाली में भोजन परोसती है। भोजन करने से एन पर चरणदास को अपने प्रण की याद आती है, वह सोने की थाली में भोजन करने से इनकार कर देता है। रानी एक चोर की अपने प्रणों के प्रति निष्ठा देखकर बहुत अधिक प्रभावित होती है और उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। चरणदास को अपनी तीसरी प्रतिज्ञा याद आ जाती है और वह उससे भी इनकार कर देता है। रानी उसे देश का राजा बनाने का प्रस्ताव देती है, लेकिन चरणदास अपने प्रण के कारण उसे भी ठुकरा देता है। अब रानी के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट है। वह चाहती है कि यह बात पूरी तरह गुप्त रहे, अन्यथा प्रजाजन इसके विरुद्ध विद्रोह कर सकते हैं। रानी कहती है कि ठीक है, लेकिन तुम यह बात किसी से मत कहना। तब चरणदास कहता है कि अगर इस संबंध में किसी ने कुछ पूछा तो वह झूठ नहीं बोल सकता। रानी के सामने अब कोई विकल्प शेष नहीं रह जाता। वह अपनी सत्ता की रक्षा और जनसामान्य के सामने अपनी छवि को धूमिल होते देखना नहीं सकती। वह चरणदास पर झूठे इल्जाम लगाकर उसे मरवा देती है। चरणदास सच बोलने के प्रण की रक्षा करते हुए मर जाना स्वीकार कर लेता है। नाटक की कथा का अंत इसी बिंदु पर होता है। चरणदास की मृत्यु के बाद अंतिम कोरस है, एक चोर ने रंग जमाया जी सच बोल के। चरणदास चोर की कथा बिज्जी की कथा पर आधारित अवश्य है, लेकिन हबीब तरवीर ने उसके अंत को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं किया। बिज्जी की कथा में रानी चरणदास की मृत्यु के बाद गुरु के सन्मुख विवाह का प्रस्ताव रखती है। गुरु इसे स्वीकार कर देता है और सत्ता का छत्र में बरकरार रहता है। बिज्जी इस बात के विरुद्ध थे कि चरणदास को एक सच्चाई के अवतार के रूप में प्रतिष्ठित करके दर्शकों को आराम से घर भेज दिया जाए। हबीब तनवीर उनके नजरिए की प्रशंसा करते हुए भी यह मानते हैं कि नाटक का वही अंत उचित है जो उन्होंने किया है। इस संबंध में उन्होंने अपने विचार इस तरह व्यक्त किए। फिर भी मैंने स्वीकार इसलिए नहीं किया कि मुझे ड्रामेटिक मोमेंट वही लगा जहाँ मैंने इसको ख़त्म किया, और उसके हाई डिफिनेशन के अंदर भी मुझे थोड़ी सी सीख मिली। इसके बावजूद भी मैं स्वीकार करता हूँ कि उस तरीके से भी फेस किया जा सकता है, मगर उसके अंदर उनका यह जो पॉइंट है कि इविल अभी बाकी है तो उसको फिर दूसरे तरीके से प्रोड्यूस करना होगा कि वह नज़र आए। अभी मुझे रानी इविल नज़र नहीं आती। सतही तौर पर साधारण से लगने वाली यह बात इतनी साधारण नहीं है। यह प्रश्न एक श्रेष्ठ कथाकार, एक श्रेष्ठ नाटककार, निर्देशक के दृष्टिभेद से संबंधित है। कथा में एक दृष्टि विशेष राजनीति पर टिप्पणी किया जाना युक्तिसंगत और सार्थक हो सकता है, लेकिन नाटक में ऐसी राजनीतिक टिप्पणी से पूर्व कथा प्रवाह के औचित्य और उसके चरित्रों के प्रति न्याय की रक्षा एक बहुत बड़ी आवश्यकता बन जाती है, अन्यथा चरित्रों के अविश्वसनीय बन जाने का खतरा पैदा हो जाता है। रानी के चरित्र के बारे में हबीब तनवीर का कहना है, रानी एक सत्ता के सिंहासन पर बैठे हुए कुछ प्रशासन चलाने वाला एक व्यक्ति है। उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या उसके पास कोई दूसरा रास्ता रह गया था? हाँ, अगर वह रानी न रहना चाहती और चाहती कि सुख से जिंदगी भोगे कि किसी आदमी से शादी कर ले और छोड़ दे राजपाट, तब तो उसका एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सकता था। लेकिन जब चोर कहता है कि मैं सच बोलने का प्रण किया है और अगर ये बात किसी ने पूछी तो मैं झूठ कैसे बोलूँगा कि तुमने प्रपोज किया और मैंने इनकार कर दिया, अब उसके पास उसका राज कहाँ तक कायम रहेगा, सत्ता कहाँ तक कायम रहेगी, क्योंकि स्कैंडल के ऊपर तो बहुत से लोग चले गए हैं, राजपाट से हटा दिए गए हैं, तो उसका मुंह बंद करना तो बहुत ज़रूरी था। तो मुझके तो उसके अंदर कोई विलेनी नज़र नहीं आती, एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आता है। चुनाचे जब उसके सामने कोई रास्ता नहीं रहा तो उसने उसको मरवा दिया, तो उसमें रानी की भी ट्रेजिडी है कि बिल्कुल, तो उसका हीरो यानी एक्सपोज हो जाती है और उसका हीरो जिसे रिजेक्ट कर देता है, यह एक एस्पेक्ट है, और दूसरा उसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट है। चुनाचे मुझे यहाँ कहानी को ख़त्म कर देना ज़्यादा अच्छा लगा। मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। विजयदान देथा इज अ ग्रेट राइटर। उनकी तमाम लोक कथाओं के अंदर एक अजीब सूझबूझ का परिचय मिलता है। चुनाचे मैंने आदरपूर्वक उनसे कहा था कि इट्स सर्व टू एवरी पॉइंट ऑफ व्यू आई सबमिट, बट आई एम नॉट एबल टू मैनेज इनकॉर्पोरेट दैट पॉइंट ऑफ व्यू इन माई प्रोडक्शन। दोस्ती हमारी कायम है, रोशन ख्याल आदमी है, दुश्मनी नहीं हुई, मिलते हैं हम उसी मोहब्बत से, उसी तरीके से। बहरहाल यह तो हुआ चरणदास चोर का कथा पक्ष। अब उसके मंचन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पहलू। बोरुदा के कार्यशाला में विजी से सुनी अनेक लोक कथाओं का पिटारा लेकर भी फिर मध्य प्रदेश के अपने रायपुर क्षेत्र में पहुंचे छत्तीसगढ़ी चुनिंदा कलाकारों के साथ छोटे छोटे रूपों में उनके मंचन का प्रयोग करने लगे। भिलाई में आयोजित एक कार्यशाला के दौरान वे अपने लघु नाटकों को मंचित करते। दर्शकों का एक बहुत बड़ा वर्ग रात भर उन नाटकों की प्रस्तुतियां देखता रहा था। उन दर्शकों में एक अच्छा खासा वर्ग सतनामी संप्रदाय के अनुयायियों का भी था। उनके प्रमुख गुरु घासीदास थे, जिनका मूल मंत्र था सत्य ही ईश्वर है। इस संप्रदाय के अनुयायी सच बोलने का प्रण लेते हैं और इसे पंथी संप्रदाय भी कहा जाता है। यह जानकर कि अब उनके दर्शकों में पंथी संप्रदाय के लोग अनेक लोग उपस्थित हैं, हबीब तनवीर ने उनके सामने सच्चे चोर की कहानी प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। नाटक के इस रूप में प्रस्तुति बहुत कच्ची थी, क्योंकि उस पर केवल 2-3 दिन ही काम हुआ था। फिर भी हबीब तनवीर ने अमरदास चोर शीर्षक से उसे प्रस्तुत किया। नाटक की कथा सनातन पंथियों को बेहद पसंद आया। प्रस्तुति के बाद पंथियों ने हबीब तनवीर से निवेदन किया कि चोर का नाम अमरदास न रखा जाए, क्योंकि अमरदास उनके संप्रदाय के गुरु हैं। हबीब तनवीर ने उनकी भावनाओं का आदर करते हुए नाटक का शीर्षक अमरदास चोर की बजाय शरणदास चोर कर दिया। सतनामी पंथी इस बात से बेहद खुश हुए और उन्होंने इस कथा को भरपूर समर्थन देने का ऐलान किया। सतनामी पंथी गाने और नाचने में बहुत निपुण होते हैं, उनके संगीत और नृत्य में भी बहुत विशिष्टता होती है। इस कथा का समर्थन देने के बाद ही उन्होंने इस नाटक में भाग लेने की भी स्वीकृति दे दी। हबीब तनवीर आगरा बाजार के दौरान स्थानीय कलाकारों को प्रस्तुति से जुड़कर इसमें एक अपूर्व क्षमता पैदा करने के अनुभव से गुजर चुके थे। उन्होंने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया तो पंथी समुदाय का एक दल पूरे मनोयोग के साथ इस प्रस्तुति से जुड़ गया। हबीब तनवीर ने पंथी समुदाय के नृत्य को नाटक के ऐसे स्थल पर रखा जो कथा के उत्कर्ष की दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त था। रानी द्वारा चरणदास चोर को राजमहल में आमंत्रित करने पर उस जुलूस में पंथी सतनामी भी सम्मिलित हैं जो चरणदास के राजमहल पहुंचने पर आनंद उत्सव के रूप में नृत्य करते हुए अपने गुरु मंत्र सतनाम सतनाम का उच्चारण करते हैं। इस पंथी नृत्य ने चरणदास चोर की प्रस्तुति में अद्भुत समा बांधा। छत्तीसगढ़ी अभिनेता तो चरणदास की कथा में डूब ही चुके थे, इसीलिए उनके अभिनेता में जो ताजगी सहजता स्फूर्ति और जीवंतता नजर आती थी उसकी भरपूर रक्षा हबीब तनवीर ने अपनी प्रस्तुति में की। पंथी सतनामियों के सहयोग से चरणदास चोर को अत्यंत आकर्षक और मुग्ध कर देने वाला बना दिया। दिल्ली में हुए इसके प्रारंभिक 3 प्रदर्शन के तहलका मचा दिया। दिल्ली का कमानी सभागार दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। समीक्षकों ने इसकी मुक्त कंठ से प्रशंसा की और दर्शकों की मांग के कारण इन्हें सप्ताह 10 दिन के बाद ही दिल्ली में अनेक प्रस्तुतियां करनी पड़ी। चरणदास चोर की अगली प्रस्तुतियां त्रिवेणी सभागार में निरंतर 10 दिनों तक होती रहीं। इन प्रदर्शनों में दिल्ली के ही नहीं आसपास के अनेक नगरों के रंगकर्मियों को भी आकर्षित कर लिया। अपने कुछ रंगकर्मी मित्रों के साथ इस प्रदर्शन को देखने मैं जयपुर से आया था। त्रिवेणी कला संगम के खुले रंगमंच में तिल धरने की जगह नहीं थी। नाटक आरंभ हुआ तो अभिनय के संदर्भ में मेरे सामने एक एक कर ऐसे पृष्ठ खुलने शुरू हुए जो मेरे लिए नितांत नए थे, लेकिन फिर भी लग रहा था कि मैं इनसे पूरी तरह परिचित हूँ। अपने देश की लोक कथाओं, लोक कलाओं और लोक नाट्यों से मेरा अच्छा संबंध था, लेकिन समकालीन रंगमंच के संदर्भ में उनका इतना सटीक उपयोग मेरी कल्पना से बाहर की चीज़ थी। उस समय टोटल थिएटर की चर्चाएँ जोरों पर थी। बर्तोड पृष्ठ के रंगमंच की अवधारणाएं भारतीय रंगमंच में अपने पैर मजबूती से जमाने की कोशिश कर रही थी। लगने लगा कि हमारे मन में पाश्चात्य रंगकर्म के लिए जिस मोड़ को लेकर नए नए प्रश्न उपस्थित होने लगे हैं उन सबका उत्तर एक ही बार में चरणदास चोर ने दे दिया है। इसीलिए यह अकारण नहीं था कि चरणदास चोर की प्रस्तुति ने सारे देश के रंगकर्मियों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट कर लिया और उसके प्रदर्शनों का ऐसा अविराम चक्र शुरू हो गया जो आज तक गतिमान है। यह सन 1974 की बात है। चरणदास चोर की अभूतपूर्व सफलता के बाद हबीब तनवीर ने कई और नाटक प्रस्तुत किए जिनका जिक्र अन्यत्र किया गया है, लेकिन हर नए नाटक की प्रस्तुति के साथ चरणदास चोर के प्रदर्शन की मांग निरंतर बलवती होती गई। इस बीच पीटर ब्रुक भारत आए। उन दिनों वे अफ्रीकी देशों और भारत के विभिन्न अंचलों के पारंपरिक नाट्य रूपों का अध्ययन अवलोकन कर रहे थे। यह बाद में उनके नाटक महाभारत का आधार बना जिसने समूचे विश्व को अनेक कारणों से अपनी ओर आकर्षित किया। पीटर ब्रुक जब भारत आए तो स्वाभाविक तौर पर चरणदास चोर की ख्याति उनके कानों में पड़ी और इस नाटक की प्रस्तुति को देखकर उन्होंने इसकी संरचना के बारे में हबीब तनवीर से लंबी बात की। कथा के चयन से लेकर अभिनेताओं की भाव प्रवणता तक के संदर्भ में प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करके वे अभिभूत हो गए। उन्होंने विदेशों की अत्यंत महत्वपूर्ण रंग पत्रिकाओं में इस नाटक के संबंध में विस्तार से लिखा और विश्वभर के शीर्षस्थ निर्देशकों तथा समीक्षकों के मन में इस प्रस्तुति के बारे में कुतूहल पैदा कर दिया। अगस्त सन 1982 में इंग्लैंड में आयोजित फेस्टिवल ऑफ इंडिया में इस नाटक को भारत की समारोह समिति ने एकमत से प्रदर्शन के लिए चयनित किया। साथ ही इस नाटक को एडिनबरा के अंतर्राष्ट्रीय नाटक समारोह में भी आमंत्रित किया गया। फ्रिंज फेस्टिवल के नाम से विख्यात इस अत्यंत प्रतिष्ठित नाट्य महोत्सव में भारत की यह पहली भागीदारी थी। एडिनबरा फेस्टिवल के शुरू होने से पहले इस नाटक ने वहाँ के रंग जगत में हलचल मचा दी थी। 9 अगस्त 1982 के स्कॉट्समैन ने लिखा, अगले सप्ताह सोमवार को जब एडिनबरा के सम्मिलित कक्ष में चरणदास चोर का प्रदर्शन होगा तो यह नया थिएटर के 30 आदिवासी लोक अभिनेताओं की भारत की बाहर पहली प्रस्तुति होगी। यद्यपि वे न पढ़ सकते हैं न लिख सकते हैं तथापि उनका यह ऊपरी तौर से दिखने वाला पिछड़ापन ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति है। एक बार जब वे मंच पर आते हैं तो ऐसा ओज और उन्मुक्त आनंद बिखेर देते हैं जिसके पास में भारत के शहराती और देहाती दोनों ही दर्शक आ चुके हैं और अब वे यही काम यहाँ भी कर सकते हैं। यह नाटक आधुनिक भारतीय नाटक के संभावित शक्ति को भी प्रकट करता है। नया थिएटर पूर्व और पश्चिम का विवेकपूर्ण समन्वय कर ऐसी रचना का विकास कर रहा है जो विश्व रंगमंच की प्रथम पंक्ति में स्थान पाने के योग्य है। एडिनबरा में हबीब तनवीर और उनके आदिवासी अभिनेताओं को अंतर्राष्ट्रीय अभिस्वीकृति प्राप्त हो सकती है। सचमुच ऐसा ही हुआ, बल्कि इससे भी कुछ अधिक। 13 अगस्त 1982 को एडिनबरा महोत्सव में चरणदास चोर की प्रस्तुति ने विश्व रंगमंच के इतिहास में नया पृष्ठ जोड़ दिया। एडिनबरा महोत्सव में इसके प्रदर्शन के बाद दर्शकों से खचाखच भरे सभागार में तालियों और हर्ष ध्वनियों की ऐसी वर्षा हुई कि हबीब तनवीर और नया थिएटर के सभी कलाकार अभिभूत हो उठे। सभागार के सभी दर्शकों ने खड़े होकर देर तक तालियां बजाई और कलाकारों के अभिवादन पर प्रत्याभिवादन का साक्ष्य प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुति का प्रबुद्ध नाट्य समीक्षकों ने जबरदस्त स्वागत किया ही नहीं, वरन समारोह समिति ने नाट्य समारोह के दौरान एक ऐसा निर्णय लिया जो एडिनबरा के फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड के इतिहास में पहला और अनोखा था। प्रख्यात रंग समीक्षक नैट चैलेट ने सोमवार 23 अगस्त 1982 के द टाइम्स में अपनी एक लंबी समीक्षा में लिखा, फ्रिंज के इतिहास में स्कॉट्समैन अखबार ने अत्यधिक स्मरणीय फ्रिंज फर्स्ट पुरस्कार प्रथम सप्ताह के मध्य में कभी नहीं दिया, परंतु भारत की नया थिएटर कंपनी ने इस परंपरा को तोड़ दिया। इस कंपनी ने अभिमान के साथ ओजस्वी प्रस्तुति चरणदास चोर के लिए पुरस्कार प्राप्त किया। यह प्रदर्शन इतना जीवंत और रोमांचक था कि आधिकारिक उत्सव समिति ने कंपनी को सम्मानित करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी। यह ऐसा रंगमंच है जो एक साथ पवित्र और अपवित्र है, एक भव्य नजारे के रूप में सामने आता है और राजनीतिकता निजी अर्थों के साथ प्रतिध्वनित होता है। इस नाटक की प्रस्तुति के बाद हबीब तनवीर के साथ हुई खुली बातचीत में सराहना करते हुए नैट चैलेट ने लिखा कि नया थिएटर के अगुआ हबीब तनवीर द्वारा की गई बातचीत उनके कार्य को स्पष्ट रूप से उजागर करने वाली भूमिका के रूप में थी। इन समीक्षाओं के अतिरिक्त अनेक समीक्षकों के कुछ अंश प्रस्तुत करना इस दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं कि विदेशी रंग समीक्षकों ने अपने विभिन्न दृष्टिकोणों से इस प्रस्तुति में क्या कुछ नया देखा। एडिनबरा के महोत्सव के बाद चरणदास चोर लंदन के प्रख्यात सभागृह रिवर साइड स्टूडियो में प्रदर्शित हुआ। 25 अगस्त के द टाइम्स के प्रख्यात समीक्षक इरविंग वार्डेल ने लिखा, एडिनबरा से जय जयकार की लहर पर आरोह होकर आने वाला नया थिएटर अपने प्रशंसा के अनुरूप सिद्ध हुआ। इस दल के एक संस्कारित निदेशक के साथ कार्यरत ओजस्वी रूप से प्रतिभा संपन्न भारतीय लोक कलाकारों ने एक सच्ची कथा कहने में कि अपने सहभागित अंदाज के जरिए स्थानीय को विश्वजनीन रूप में रूपांतरित कर दिया। इसके लिए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा हुई। नया थिएटर की अभिनय शैली में पहेली बुझौल खेल की साधारण सांकेतिक अंग भंगिमाओं और अत्यंत नियमनिष्ठ समूह कार्य का समन्वय किया गया। यह बाजार और दीवार दोनों ही जगहों का है और जब हबीब खुद एक छोटी भूमिका में मंच पर आए तो दर्शक अत्यंत संतोष पाते हैं। अभी तनवीर विशिष्ट मुख सौंदर्य वाले व्यक्ति हैं जो कि क्षणिक विचारों को अपने सिर से हल्का सा झटका देकर या अपने गले में लटकते हार के एकाध मोती को अंगुलियों में छूकर भावों को व्यक्त करने में समर्थ हैं, जीवन की पुष्टि करने वाली घटना के रूप में प्रदर्शित होती है। इंग्लैंड के प्रसिद्ध पत्रकार गार्डियन ने 25 अगस्त के अंक में विशिष्ट समीक्षक माइकल विलिंगटन ने लिखा, इस कथा में तबला क्लेरियोनेट हारमोनियम और ढोलक के साथ समूह गान गुथे हैं। नाटक के उत्तरार्ध में हतप्रत कर देने वाला कर्मकांडी नृत्य है जिसमें ढोल बजाने वाला दरवेश के समान चक्कर खाता है और उसमें गायक ढोल बजाने वाले की दंडवत धड़ पर खड़ा रहता है। दर्शकों के साथ जो दृश्य आता है वह वृत्तात्मक रंगमंच और लोक कौशल का आश्चर्यकारी समन्वय है और यह हबीब तनवीर की सफलता का मानदंड है कि दर्शक गोविंद राम के नायक को सिर्फ एक देहाती लफंगा समझना शुरू करते हैं और अंत में उसे एक प्रत्यक्ष नैतिक शक्ति के रूप में सामने लगते हैं। द स्टैंड के 25 अगस्त के अंक में क्रिस्टोफर हडसन की टिप्पणी, नाटक के सभी अभिनेताओं ने ताजगी भरा और सहज स्पर्शनीयता का इतना विभोर कर देने वाला संगीतमयी संगीतिक लय के साथ अभिनय किया है कि हम यह भूलने को मजबूर हो गए कि हम एक भारतीय प्रस्तुति देख रहे हैं। यह ध्यान में रखते हुए कि सारे के सारे अभिनेता भारत के मध्य हिस्से के प्रांत मध्य प्रदेश के ग्रामवासी हैं, ओजस्वी पंथी नर्तक भिड़ाई इस्पात कारखाने के सौजन्य से सामने आ रहे हैं। यह प्रयास में भड़कीली और संशयरहित विश्वास के साथ प्रदर्शित एक उल्लेखनीय प्रस्तुति है। चरणदास के रूप में गोविंद राम और रानी की भूमिका फिदाबाई का विशिष्ट गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। गार्डियन ने 27 अगस्त के अंक में टिप्पणी की कि हबीब तनवीर द्वारा निर्देशित ग्रामीण कलाकारों का यह समूह अपने उत्कृष्ट हास्य शैली और प्रभावपूर्ण समूहनों के द्वारा हमारी प्रमुख नाटक कंपनियों को दो एक बातें सिखा सकता है। विक्टोरिया रॉडेन ने 29 अगस्त के ऑब्जर्वर में अभिमत दिया। इस प्रदर्शन के साक्ष्य से यह निश्चित है कि इसका प्रयोग विश्वजनीन है। कुछ महीने पहले पीटर ब्रुक ने द टाइम्स में अपने साक्षात्कार के अधिकांश हिस्से में विनम्रता के साथ नया थिएटर कंपनी के काम की ग्रास रूट पॉप आर्ट के रूप में प्रशंसा की। इस कंपनी की स्थापना के पीछे अवीर तनवीर का उद्देश्य एक ऐसे भारतीय रंगमंच की रचना करने का है जो पश्चिमोन्मुखी नगरवासियों और दूसरी ओर समय की धारा से कटे हुए देहातों में रहने वालों के बीच की दूरी लोक नाटक के शुद्धिकृत और संस्कारित रूप द्वारा पाट सके। द टाइम्स के 31 अगस्त के अंक में प्रकाशित एक बॉक्स आइटम भी कम दिलचस्प नहीं। इसके अनुसार आर्थिक रूप से परेशान रिवरसाइड स्टूडियोज को नारियल का प्रसाद मिला है। भारत से आया नया थिएटर ग्रुप अपने बेहद लोकप्रिय प्रदर्शन चरणदास शोर को शुरू करने से पहले एक नारियल फोड़ता है और अपने ग्राम देवता को उस मंच को आशीर्वाद देने की प्रार्थना करता है जिस पर वह ग्रुप प्रदर्शन करता है। इसमें अवश्य कुछ शक्ति, क्योंकि रविवार को रिवरसाइड में 3 प्रदर्शन हुए जिसके सारे के सारे टिकट बिक गए थे और एडिनबरा फेस्टिवल में अपील फंड की सहायता के लिए किया गया चैरिटेबल शो भी बहुत सफल रहा। जाहिर है कि केवल ब्रिटेन के ही नहीं बल्कि विश्व रंगमंच के जाने माने समीक्षकों और रंगचिंतकों ने एक स्वर से अभी तनवीर के चरणदास शोर की मुक्त कंठ से प्रार्थना की प्रशंसा की। फ्रिंज फर्स्ट अवार्ड से कहीं अधिक महत्वपूर्ण समीक्षकों और दर्शकों की वह प्रतिक्रिया है जिसे शब्द में व्यक्त करना संभव नहीं, यह केवल अनुमान का विषय है।